इसलिए कबीर ने ठीक कहा है, इक्केते सब होत है, इक्केते सब होत है, सबसे एक न होए। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। हाँ, श्वेत केतु की बात रह गई। श्वेत केतु से पिता ने पूछा, श्वेत केतु बोलता है मैं तो कुछ नहीं जानता। ऐसा तो एक को ऐसा कौन सा है जिसको जानने से सब जाना जाता है। बोले जाओ अपने आचार्यों से सीख के। बोले वो जितना जानते थे सब सिखा दिया। तब पिता अरुणी ने कहा, उदालक अरुणी ने, कि पुत्र अभी तुझे बहुत जानना बाकी है, बहुत सीखना बाकी है। ये खाली इस जगत का ज्ञान नॉलेज पढ़ के आया है और अकड़ लेकर आया है। वो ज्ञान अकड़ अकड़ वालों को नहीं मिलता है। तब श्वेत केतु कुछ तो पिता के ब्लड के संस्कार थे, कुल के संस्कार थे, गुरुकुल के थोड़े संस्कार थे, सावधान हो गया। पिताजी फिर आप जानते तो आप ही बताने की कृपा करिए। पिता ने कहा कि पुत्र ये जो तू अपने को श्वेत केतु मानता है या अपने को विद्वान मानता है, ये सारी मान्यताएं मन और बुद्धि तक की है। और ये मन और बुद्धि, ये वाग्मय तेजमय मनोमय, ये सब प्रकृति की चीज है। ऐसा करके चुप हो गए अरुणी। श्वेत केतु कहते हैं कि हे पिताजी, मैं समझ नहीं पाया, विस्तार से समझाने की कृपा करें। बोले तू तो बोलता है मैं सब पढ़ के आया, क्या पढ़ा तू? वाग्मय तेजमय ये भी नहीं जानता तू? देख, हम जो अन्न खाते हैं उस अन्न से मन बनता है। पिताजी अन्न से मन, अच्छा जाओ, नहीं समझा तो जाओ उपवास कर 15 दिन, फिर समझेगा। 15 दिन उसने उपवास किया, जो अहम था या दोष थे दूर हुए। 15 दिन के बाद पिता के चरणों में प्रणाम करके पूछता है कि क्या आज्ञा है? बोले वो जो वेद पढ़ के आया उसकी ऋचाएं तो बोलो। बोले वो तो अब सुमरण में नहीं रहा, सुमरण में नहीं रहा तो अन्नमय मन है, जाओ भोजन करो, भोजन करो, आराम करो, फिर आओ। आराम करके फिर आए। बोले अब बोलो, ऋचाएं बोलने लगा। बोले कैसे? अन्नमय प्राण है ना, अन्न खाना बंद कर दिया तो देखो अन्नमय मन। 15 कलाएं उसकी शांत हो गई, एक ही कला रही खाली होने की, बाकी सारी कलाएं उसकी क्षीण हो गई। देख बेटा, आदमी जो अन्न खाता है ना उसका 3 हिस्सा बनता है। एक हिस्सा स्थूल हिस्सा मल बन जाता है, मध्यम हिस्सा मांस बनता है और सूक्ष्म हिस्सा से मन बनता है। आदमी जो पानी पीता है उसका स्थूल हिस्सा पेशाब बनता है, मध्यम हिस्सा रक्त में मिश्रित होता है और उत्तम हिस्सा से वाणी बनती है। ऐसे घी आदि आदमी खाता है तो वाक शक्ति आती है, नेत्रों को शक्ति मिलती है, श्रोत्रों को शक्ति मिलती है। तो ये खुराक के सात्विक हिस्से सूक्ष्म हिस्से से तुम्हारे श्रोत्र इंद्री नेत्र इंद्री आदि संचालित होती है, मन इंद्री और मति चलती है। मध्यम हिस्से से तुम्हारा मांस पेशी वाला शरीर पुष्ट होता है और कनिष्ठ हिस्सा रोज बाहर चला जाता है। जाओ जो सुना है उसको पक्का करो, मनन करो। मनन करके दूसरे दिन आया। अब पिता को पिता नहीं देखता है, पिता को गुरु नहीं देखता है, पिता को सद्गुरु रूप से देखता है। गुरुओं को तो गुरुकुल में गुरुओं से तो बहुत सीखा, लेकिन अभी जो सीखा इससे कुछ श्वेत केतु के चेहरे पर मति पर कोई आध्यात्मिक तेज छाया है, प्रकाश हुआ। कह रहे मेरे घर में ही मेरे ओलिया थे, मेरे घर में ही मेरे पीर थे और मैं भटक रहा था। पिता की गुरु की नहीं पूजा की श्वेत केतु ने। जब पुत्र पिता समझता है तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता है। पिता में जब गुरु बुद्धि होती है, सद्गुरु बुद्धि होती है, पूज्य बुद्धि होती है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो दिखाए, तब वो गुरु के खजाने का अधिकारी होता है। गुरु उदालक ने, अरुणी उदालक अरुणी ने उपदेश का आरंभ किया कि बेटा ये सारा जगत परमात्मा से ओतप्रोत है, एक सुई भी, एक कख, एक तिल भी भगवान की सत्ता के बिना नहीं हो सकता है, और एक तिल को भी अगर बुद्धिपूर्वक देखो तो भगवान में है और भगवान उसमें है, एक मच्छर में भी देखो तो भगवान उसमें है और वो भगवान में है। बोले पिताजी समझ में नहीं आता। बोले देख श्वेत केतु, मधुमक्खियां कई फूलों से, कई फलों से, कई वृक्षों से, कई जलाशयों से वो शहद खींच के आती, मिठास ले आती है, और मिठास जब शहद बन जाती है तो पता नहीं चलता कि कौन से फल क्या है, कौन से फूल का है, कौन से जलाशय की कौन सी मिठास है, वो शहद में ओतप्रोत हो जाती है। ऐसे ही लोगों के अंदर जो चेतना दिखती है, ज्ञान दिखता है, आनंद दिखता है, ये केवल बुद्धि से सोचकर, विचार के, अनुमान करके भगवान की शक्तियों का, भगवान के होने का, भगवान के इन दैवी लीलाओं को देखकर ही भगवान के होने का पता लगाते लगाते आदमी भगवान के होने का साक्षात्कार करता है। वत्स, जाओ आज का पाठ पक्का करके आओ। श्वेत केतु आराम भी करता है, पाठ पक्का करता है, रात बिताता है, प्रभात को नहा धोकर ध्यान आसन प्राणायाम आदि करके नियम गुरु के चरणों में आता है, गुरु की पूजा करता है, वंदन करता है, अर्चना करता है और प्रार्थना करता है कि गुरुदेव, पिता को गुरु की नाई पूजते हुए श्वेत केतु ब्रह्म विद्या लेने को बैठता है। पिता ने कहा कि देख श्वेत केतु, एक में सब है, सब में एक, समझे? बोले ये वाक्य, वाक्य समझा, अर्थ भी शायद समझ जाऊंगा, लेकिन इसको ठीक से बुद्धि योग हो जाए ऐसी कृपा कीजिए। उदालक प्रसन्न हुए कि शिष्य में जिज्ञासा है, समझने की प्यास है। बोले देखो वट वृक्ष, उसका एक टेटा तोड़ के ला, वट वृक्ष का फल तोड़ के ला, ये लो फल, फल को तोड़ो। फल तोड़ा, उसमें से एक बीज निकालो, बीज निकाला, ये गुरु बीज, बीज को तोड़ो, बीज तोड़ा, इसमें कुछ दिखता है, पत्ते दिखते हैं, टहनियां दिखती है, डाले दिखते हैं, मूल दिखता है। बोले पिताजी इसमें कुछ नहीं है। बोले वत्स, इसमें कुछ दिखता नहीं, फिर भी इसमें पूरा वटवृक्ष छुपा है ना, इसको बो देंगे वटवृक्ष होगा ना, और उस वटवृक्ष से कितने ऐसे बीज होंगे और उन बीजों से कितना होगा, बोलो कितना होगा, गिनती कर सकते हो? बोले नहीं। तो जैसे वटवृक्ष के बीज में पूरा वटवृक्ष छुपा है और वटवृक्ष में वट के बीज छुपे हैं, ऐसे जगत में परमात्मा छुपा है, परमात्मा में सारी सृष्टियां पड़ी। तालियां तो बजा दी लेकिन साक्षात्कार नहीं किया तुमने, ये तो सुनने का पुण्य मिला और मजा मिला। मच्छर में भी चेतना और ज्ञान है, कीड़ी में भी अक्ल है पेट भरने तक की, नमक क्या है और शक्कर क्या है कीड़ी जानती, जानती है ना, ये ज्ञान कहां से आया? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इतना सूक्ष्म है सूक्ष्म, बैक्टीरिया को भी ज्ञान होता है अपना खाने का, क्या खाना क्या ना खाना, ये ज्ञान उस ब्रह्म का है, परमात्मा का है। वो एक अंश विकसित हुआ है, मनुष्य में कितना, चार अंश पांच अंश विकसित होता है, ब्रह्मवेताओं में दस अंश विकसित होता है, और साक्षात्कारी महापुरुष और जो साधना करते और गुरु आज्ञा में रहते तो छह अंश और विकसित होता है, भाग विकल है। तो ऐसे पुरुष भगवान माने जाते, भगवान वेदव्यास, भगवान पराशर, भगवान कृष्ण, भगवान राम। लेकिन भगवान राम कृष्ण वेदव्यास आए, आए तभी उसी भगवान में थे, तभी भी उसी भगवान में, और विलय हुए तो भी उसी भगवान में। ऐसा ज्ञान बोल कहीं सुना सीखा। अब पता चला कि ये तो पिता के रूप में साक्षात परब्रह्म परमात्मा का ही रूप है। जो जो श्वेत केतु सुनता है समझता है त्यों त्यों उदालक की महिमा, उदालक में बड़प्पन का दर्शन होता है। उदालक पहले थे वही थे, लेकिन शिष्य की मति जितनी विकसित होती है उतना ही गुरु का महिमा जानता है। श्वेत केतु जहाज का पाठ पूरा हुआ पक्का कर। दूसरे दिन फिर श्वेत केतु आया पिता की पूजा की गुरु की नाय। देख एक काम कर, निमक का डला है ना, निमक का डला ले आओ। निमक का डला लाए। तेरे को क्या पूछना है? बोले भगवान सर्वत्र है, सब में है, तू दिखते तो नहीं, कैसे देखा जाए? बोले देखा नहीं जाता बेटा, जो भी देखा जाएगा सब माया है, ये अनुभव का विषय है। माया भी भगवान के दर्शन तो होंगे, माया विशिष्ट चेतन का तो दर्शन होगा इंद्रियों से, लेकिन माया विशिष्ट चैतन्य जिससे चैतन्य है उस शुद्ध चैतन्य का दर्शन इंद्रियों से नहीं होगा। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा, यदिदम मनसा चक्षुर्भ्याम श्रवण आदि भी नश्वरम गृहमाणम च विद्धि माया मनोमयम। जो मन इंद्रियों से और चक्षुओं से कानों से सुनाई दिखाई पड़ता है वो सब माया है। उद्धव तू जाए एकांत में, माया से पर मुझ कृष्ण तत्व में मिल जा, तो फिर कभी बिछड़ने का दुर्भाग्य तेरे को नहीं आएगा। साथ में तो कोई आया नहीं, साथ में कोई जाएगा नहीं, लेकिन जो कभी साथ छोड़ता नहीं उस मुझ कृष्ण तत्व का अनुसंधान कर। बद्रिक आश्रम में भगवान कृष्ण ने उद्धव को भेज लिया आत्म साक्षात्कार करने के लिए। तो आत्मा तो सर्वत्र ओतप्रोत है, कि बेटा अनुभव करने के लिए सूक्ष्म मति चाहिए, और सूक्ष्म मति इंद्रियों को संयत करेगी, इंद्रियों का आकर्षण कम होगा, तब वो मति शुद्ध होगी और शुद्ध तत्व का उपदेश मिलेगा, तब उसमें टिकेगी, तो वह मति रितंभरा प्रज्ञा हो जाएगी, परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। बोले पिताजी शब्दों से तो मैं समझ गया, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल। बोले वो निमक का डला ला, ये निमक है ना, जा पानी का एक लोटा ले ले, बोले इसमें डाल दे, अपने कमरे में रख, सुबह इसको ले आना। कमरे में रखा, सुबह ले आया। उदालक बोलते हैं तो नमक का डला कहाँ डाला था? बोले इसी लोटे में, ले निकालो। वो बेचारा भोला श्वेत केतु हाथ घुमा घुमा के थक गया, नमक का डला तुम था ही नहीं, तेरे कमरे में कोई आया तो नहीं था? बोले नहीं। नमक का डला कहाँ गया? बोले पिताजी नमक का डला तो नहीं दिखता है। बोले बेटा इसमें घुल मिल गया, घुल मिल गया, वो आंखों से तो नहीं दिखता फिर भी घुल मिल गया है, ये तो तू समझेगा मानेगा? बोले हाँ। अच्छा अब ये पानी को चखो, अरे खारा है, नमक घुल मिल गया है, सच्ची बात है पिताजी। अच्छा ये पानी को 15 बर्तनों में बांट दो, 15 कटोरी में बांट दिया, अब एक एक कटोरी, एक कटोरी का पानी दूसरी 10 कटोरी में आचमन आचमन डाल दो, डाल दिया, उस आचमन का 10वां हिस्सा अपने मुंह में डालो। आचमन का 10वां हिस्सा मुंह में डाला तभी भी उसमें खारास है। ये क्या है कि पिताजी वो नमक ऐसा पानी से घुल मिल गया कि ओत प्रोत 10वां हिस्सा क्या 20वां हिस्सा भी करें तभी भी उसकी असर है। ऐसे ही वो चैतन्य ब्रह्मांड में ऐसा घुल मिल गया बेटा कि मच्छर में कीड़ी में खटमल में भी उसका ज्ञान और चेतना है, और खटमल और कीड़ी मर जाता है फिर भी वो आकाश स्वरूप ज्ञान और चेतना नहीं मरती, फिर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। ऐसे ही आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता का ज्ञान गुरु ने दिया शिष्य। अणुयान महत्व महयान, अणु से भी अणु है वो चैतन्य पर ब्रह्म परमात्मा, और महान से भी महान है, छोटे से छोटा इतना है कि राई का दाना भी उसके आगे सुमेरु पर्वत जैसा लगता है, और बड़े में बड़ा ऐसा है कि हिमालय भी उसके आगे राई जैसा भी नहीं लगता, इतना वो बड़ा है। अनंत ब्रह्मांड को व्याप रहा है वो परमात्मा, आकाश को भी व्याप रहा है, ऐसा आत्मा परमात्मा दत्तात्रेय बोलते हैं। उस परमात्मा के स्वरूप को, अपने उस स्वरूप को छोड़कर लोभी आदमी चार पैसे की चिंता में, मोही आदमी चार बच्चों की चिंता में, अहंकारी आदमी चार पहियों की कुर्सी की चिंता में, और विषयी आदमी विषय विकारों में अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। और उनको नष्ट होने से बचाने के लिए भगवत गीता का श्लोक आज का कहता है, यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनीर मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोधो विगत इच्छा भय क्रोधो यो सदा मुक्त एव स
सदा मुक्त एव स।
जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि अपने वश में है, जो मोक्ष परायण है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा ही मुक्त है। ओ इन कथाओं से आप ये जरूर लेंगे कि अपने मन को इंद्रियों के पीछे न बहने दे, मन को बुद्धि की आज्ञा में चलाएं, और बुद्धि प्रभावशाली तब होगी जब प्रभावशाली पुरुषों का, प्रभावशाली शास्त्रों का, और प्रभावशाली से प्रभावशाली परमात्मा का संग हम आदर पूर्वक करेंगे, उनकी बातें आदर पूर्वक मानेंगे, उनकी बातों का आदर पूर्वक मनन करेंगे, तो हमारी मति में आध्यात्मिक प्रभाव आएगा और मन संयत रहेगा, इंद्रियां कुपथ्यगामिनी न होकर सुपथ्यगामिनी होगी। तो हमें भी आज के श्लोक के अनुसार विगत इच्छाएं चली जाएगी, वासनाएं भय भी चला जाएगा, क्रोध भी चला जाएगा, और मोक्ष परायण सदा मुक्त एव स ऐसा अनुभव हमको हो जाएगा। फिर बाहर के व्यवहार में तो अज्ञानी जैसा आचरण दिखेगा, लेकिन अंदर में न भय होगा न क्रोध होगा, सदा मुक्ति का रस जीते जी अनुभव होगा। हरि ओ देखकर हल्की इंद्रियां हल्का मन ये इच्छा करता है कि मुझे गाड़ी ऐसी मिल जाए, लाड़ी ऐसी मिल जाए, बच्चे ऐसे हो जाए, मकान ऐसा हो जाए, लेकिन जिसकी बुद्धि सत्संग करके साधना करके सत्य स्वरूप परमात्मा की कथा श्रवण करके जिसकी बुद्धि कुछ सतपद के तरफ चली है, वो सोचता है कि इनको गाड़ी है वाड़ी है, फिर क्या हो गया, अंत में क्या, हजारों गाड़ी वालों में भी मैं ही हूँ, तो वो नई संसार की इच्छा नहीं करता, वो तो दालक की नाई, ये सोचता है कि ऐसे दिन कब आवेंगे कि मेरे को संसार का आकर्षण न रहेगा, ऐसे दिन कब आवेंगे कि सुख और दुख में मैं सम रहूंगा, ऐसे दिन कब आएंगे कि मान और अपमान की चोट मुझ तक नहीं पहुंचेगी, ऐसे दिन कब आएगा कि मैं जीवन मुक्त पुरुषों की नाई संसार में जीऊंगा, ऐसे दिन कब आएंगे कि मैं अपने सहज स्वभाव में निश्चिंत नारायण स्वभाव में जगूंगा। लोभी सोचता है कि ऐसे दिन कब आएंगे कि और धन दुगना हो, मोही सोचता है कि ऐसे दिन कब आएंगे कि अमुक बेटी बेटी का ब्याह और शादी और जन्म हो जाए, अहंकारी सोचेगा कि ऐसे दिन कब आएंगे कि इस कुर्सी से भी कोई बड़ी कुर्सी मिल जाए, भक्त सोचता है कि ऐसे दिन कब आएंगे कि भगवान का आंख मूंद और दीदार हो जाए। लेकिन उन भक्तों को जब सत्संग मिलता है, बुद्धि में सत्व बढ़ता है, तो भक्त सोचते हैं कि भगवान शाकुनी दुर्योधन सुरपंखा के आगे भी खड़े थे, भगवान आ जाए तो क्या। लेकिन भगवान जैसा चाहते हैं समत्व योग, ऐसे समता में अभी जो अंतर्यामी भगवान है उसका अनुभव करके, जिससे भगवान भगवान है, महापुरुष महापुरुष है, उस महान परमेश्वर स्वरूप का साक्षात्कार करने की ही तीव्र इच्छा होती है उत्तम भक्तों को, उत्तम जिज्ञासुओं को। ऐसे के दिन कब आएंगे कि कर्म करते हुए भी मैं अपने अकर्ता भाव में स्थित रहूंगा। ऐसे दिन कब आएंगे कि गुरु का हृदय मेरे पर उछल पड़ेगा। ऐसे दिन कब आएंगे कि गुरु का अनुभव मेरा अनुभव बनाने को मैं लग जाऊंगा। ऐसे दिन कब आएंगे कि गुरु की दृष्टि से मेरी दृष्टि मिले, भगवान की दृष्टि से मेरी दृष्टि मिले, गुरु को जो ब्राह्मी दृष्टि मिली है, गुरु को और भगवान को जो ब्राह्मी दृष्टि है, उन्हीं दृष्टि में मैं अपनी दृष्टि मिलाकर जगत को ब्रह्मरूप अथवा तो स्वस्वभाव को निज रूप देखकर, जगत को परिवर्तित देखकर उसके आधार में स्थित होऊंगा। जैसे नमक वाले पानी के कण कण में नमक मिश्रित होता है, ऐसे ही जगत के कण कण में जगदीश्वर मिश्रित हो है। उद्धालक के उपदेश से श्वेत केतु ज्ञात गेय हुआ, हम कब होंगे ज्ञात गेय। ऐसे महाभागशाली दिन कब आएंगे कि राग द्वेष की चोटें कम लगने लगे, काम क्रोध भय उद्वेग से अपने चित्त को सुरक्षित करने की सद्गुरु की दीक्षा कब मिलेगी। ऐसे दिन कब आएंगे कि कोई सद्गुरु महापुरुष को अपना गुरु मानकर हम निश्चिंत नारायण के रास्ते जाएंगे। पवित्र भक्त के हृदय में ऐसे विचार उठते हैं। संयम बिना की जिंदगी स्टीयरिंग और ब्रेक बिना की गाड़ी जैसी है, और सदगुरु बिना की जिंदगी इंजन बिना की कार है। इंजन भी हो ब्रेक भी हो, ब्रेकें खूब हो, दो ब्रेक हो जाए, दो स्टीयरिंग हो जाए, लेकिन इंजन नहीं तो किसी काम का नहीं। इंजन तो है, ब्रेक और स्टीयरिंग नहीं है तो भी खड्डे में गिर जाएंगे। इसलिए गुरुदेव आध्यात्मिक शक्ति रूपी इंजन रूप मंत्र दीक्षा दे देते हैं, साथ साथ में संयम का स्टीयरिंग और ब्रेक रूपी स्टीयरिंग भी बार बार सुनाते रहते हैं। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायण, यत्न करके अपने इंद्रियों को व्यर्थ जगहों से वापस हटाना साधक। तू संसार में जा रहा है कि हे शिष्य हे साधक, मुझे तेरी श्रद्धा पर भरोसा है। हे वत्स, तू संसार में जाएगा, संभल संभल कर कदम रखना, मोह के दलदल में कहीं दस न जाना, विकारों के कांटों से अपने पैर छील मत लेना, साधारण आदमियों के साथ अपनी कंपेरिजन करके साधारण जिंदगी मत गुजारना, संसार बट्टी है, ये भल भलों को नचाती जलाती है, फिर भी मैं तुझे संसार में घर लौटने की इजाजत दे रहा हूं, मुझे तेरी श्रद्धा पर, तेरी भक्ति पर, तेरे छोटे मोटे व्रत और नियम पर भरोसा है। तू समय समय पर सत्संग का सहारा लेना, एकांत का सहारा लेना, सत्कर्म का सहारा लेना, कीर्तन का सहारा लेना, जप का सहारा लेना, क्योंकि तेरे साथ पांच शत्रु लगे हैं और तू अकेला है। तुझे युगों से ये शत्रु दबोचते आए हैं वत्स। कभी काम ने तेरी कमर तोड़ी, तो कभी लोभ ने तेरा दिल धड़काया, कभी मोह ने तुझे मार मारा, तो कभी अहंकार ने तुझे उद्विग्न किया। हे साधक, तू अपने इन शत्रुओं से जूझता जूझता 84 लाख जन्मों से पटका आया है। अब इन दुष्टों को पटक कर तू विजेता हो जाए, ऐसी भगवान की और सद्गुरु की इच्छा है। अगले जन्म के धन धान्य पुत्र परिवार अभी तेरे पास नहीं है, ऐसे इस जन्म की भी ये चीजें एक दिन तेरे से छूट जाएगी। इसलिए इन चीजों के लिए ज्यादा चिंतित न होना, भयभीत न होना, आकर्षित न होना। और ये चीजें मिल भी जाए, साधना किया है तो ये चीजें स्वाभाविक आने भी लग जाए, तो इनका अहंकार मत करना साधक। अगर सुख सुविधाएं आए तो इनको ईश्वर के दैविक कार्य में बांट कर प्रसाद करके उसका उपयोग करना। विघ्न बाधाएं आ जाए तो भगवत ध्यान और त्याग के बल से, त्याग के कदमों से विघ्न बाधाओं को त्याग के बल से जीता जाता है, और सुविधाओं को सदुपयोग के बल से, वितरण के बल से सुविधाओं के प्रभाव को जीता जाता है। तेरे को युक्तियां और कुंजियां दे रहा हूं, जब जिस जिस ताले को जो जो कुंजी लगानी पड़े तो उपयोग करना। अपने हृदय के ताले खोलते रहना, विवेक को जगाते रहना, वैराग्य को बढ़ाते रहना, परमेश्वर ध्यान और भक्ति का कोई नियम बना लेना, कोई पवित्र जगह घर में सुरक्षित कर लेना, 2-5 ताजे फूल धूप दिया करके उस जगह को पावन रखना, अपने इष्ट देव गुरुदेव के प्रति बैठ जाना सामने, उसकी मूर्ति के सामने एक टक 5 मिनट तू देखना, फिर कंठ में उनका ध्यान करना, तुझे वो प्रेरणा देते रहेंगे। दुनिया के अंगामों में आंख तेरी लग जाए तो तू सावधान होना, ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले। हे शिष्य, ऐसा कोई संगी नहीं जो तेरे जीवन में साथ चलेगा। तेरे साथ तो तेरा सत्संग चलेगा, तेरा सत्कर्म चलेगा, और तूने जो ब्रह्म ज्ञान पाया है वही तेरी रक्षा करेगा पुत्र। ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले। इन मेलों में रहकर, इन महफिलों में रहकर आखिर तुम अकेले चलोगे, कुटुंबी तुम्हें शमशान में ले जाएंगे, चिता पर सुलाएंगे, दोस्त तुम्हें अग्नि देकर वापस लौट जाएंगे, दुश्मन खुशियां मनाएंगे, दोस्त आंसू बहाएंगे, लेकिन तुम्हें तो अकेला जाना पड़ेगा शमशान की अर्थी पर, अग्नि का भोग अकेले देना पड़ेगा। तेरे शरीर को अग्नि भोग ले, तेरे शरीर को अग्नि भस्मीभूत कर ले, उसके पहले तू श्री कृष्ण की ज्ञान अग्नि से, तू सतगुरुओं की ज्ञान अग्नि से अपने बंधनों को जला देना, अपनी वासनाओं को कर्मों को जला देना वत्सा तू सावधानी की शिखर यात्रा करना आत्म शिखर पर चढ़ना आत्म प्रकाश में जीना आत्म परमात्मा ध्यान में आगे बढ़ना हे साधक तू अपने जीवन में धन्यता लाने वाली कोई न कोई टेक रख लेना कोई न कोई व्रत रख लेना कोई न कोई नियम रख लेना ताकि ये पांच शत्रु तुझे जब सताए तो कभी तेरा संयम रक्षा करे तो कभी जप तेरी रक्षा करे कभी नियम तेरी रक्षा करे तो कभी अंतर्यामी नारायण तेरी रक्षा करे कभी गुरु की प्रेरणा तेरी रक्षा करे। तू जा रहा है संसार रूपी कटघरे के लिए मार्ग में। इस संसार ने किसी को पूर्ण सुख नहीं दिया, इस संसार ने किसी को छोड़ा नहीं, सबको रुलाया। राम का बाप भी रोकर गया संसार से, इसलिए संसार में मोहब्बत मत करना, संसार का सदुपयोग करना और परमात्मा को प्रेम करना। जब यज्ञ में और प्रेम यज्ञ में तो अपना समय लगाना, प्रेम करने योग्य एक आत्मा परमात्मा गुरुदेव है तो उन्हीं को हृदय पूर्वक स्नेह करना, तो परमात्मा को स्नेह करना, परमात्मा का जप करे तो प्यार से करना, परमात्मा का ध्यान करे तो प्यार से करना, परमात्मा का श्रवण करे तो प्यार से करना, मनन करना। फिर संसार बटे तुम्हारे लिए शीतल गंगा जल हो जाएगा। पिताओं के शरीर से गिरा, तू कई माताओं के गर्भों में लटका, तूने कई जन्मों तक मित्रों को संभाला, कई जन्मों तक वस्तुओं को संभाला, इस जन्म में भी तू संभाल, हमारी मना नहीं, लेकिन हमारी प्रार्थना है तू हमारे सत्संग को भी संभालना, हमारे हरि नाम को संभालना, हमारे हरि प्रसाद को संभालना, उसे बढ़ाना पाना पवाना बढ़ाना। ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले, शमशान तक के साथी हैं तेरे, लकड़ी दे दी चल दिए, कोई तो आधे में से चले जाएंगे, कोई शमशान तक पहुंचेंगे फिर जाएंगे, कोई अग्नि देखकर चले जाएंगे, तो कोई चिता समापन तक ही खड़े रहेंगे, फिर अपने अपने काम में लग जाएंगे, तेरे लिए कौन रोता रहेगा सदा। अगर दो दिन रोया भी तो तुझे क्या लाभ, शत्रु खुशी मना लेंगे, मित्र शोक सभा मना लेंगे, लेकिन हे साधक तेरा परम मित्र तो परमात्मा है, परमात्मा का ज्ञान है, वो अगर तेरे साथ होगा तो तू मुक्त हो जाएगा। नहीं तो हजारों जन्मों से तूने अग्नि दान लिया है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान का दान जिस जन्म में लिया वो जन्म सफल कर लेना। ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले, इन मेलों में रहकर तुम अकेले चलोगे, अकेले हो जाओ, अनाथ होकर संसार से जाना पड़े, हे साधक अनाथ होकर मरना पड़े, उसके पहले तुम अपने नाथ को, अपने आत्मदेव को, अपने गुरुदेव को तात्विक रूप से मिलने का रास्ता एड्रेस जान लेना। अब दोबारा किसी माँ के गर्भ में भटकना लटकना मत नहीं, दोबारा किसी देव या असुर योनि में, पशु या पक्षी योनि में, मनव या दानव योनि में जाना नहीं। अब तो परमात्मा को पाकर परमात्मा मय हो जाना है। भी बिखेरो तो उसको प्रार्थना करना, हे नाथ तू रक्ष, रक्षा कर, रक्षताम रक्षताम, रक्षमाहम रक्षमाहम, तू अपने अंतःकरण की रक्षा करना। अगर तू स्वयं न कर सके तो भगवान को प्रार्थना करना कि प्रभु त्राहि माम रक्षमाम रक्षमाम, हे मारा कानूरा, हे मारा भगवान, तू मारी मती नी रक्षा करजे, मारी भक्ति नी रक्षा करजे, मारी साधना नी रक्षा करजे, तू मारी रक्षा करजे। मारा प्रभु मने विकारो पाड़े छे, मने अहंकार पाड़े छे, मने मोह पाड़े छे, माया पाड़े छे, तारा सुधी पहुंचवा नथी देता, तू मारो हाथ पकड़जे। प्रभावती तारू कांडू पकड़ी दू, पण तू मारो हाथ पकड़जे मारा वालुड़ा। संस्कारों को मिटाना, कभी पुस्तक पढ़ते पढ़ते कोई अच्छी बात लगे तो फिर आगे मत पढ़ना, वहीं गोता मारना दो घड़ी, कभी जप करते करते ध्यान लग जाए तो उसी घड़ी में परमात्मा में गोता मारना। ए साधक, ए भक्त, ए वत्स, दुनिया के बड़े बड़े उद्योगों की अपेक्षा दो क्षण परमात्मा में विश्रांति पाना अनंत गुना हितकारी रहेगा तेरा। दुनिया ना मोटा मोटा उद्योगों करता बे मिनट भगवान ना ध्यान मा, भगवान ना स्वरूप मा विश्रांति पामे, ये अनंत गुणो हित कर थशे तने। हे मारा वाला भक्त साधक, तू तारी साधना नी रक्षा करजे। हूँ तने घरे जवानी ना कहतो नथी, पण तू नरक मां जईश नहीं, खोटा मार्गे जईश नहीं, पाप ताप मां जईश नहीं। तू पुण्य सलीला हरि नाम कीर्तन मां, हरि नाम नी प्रभात मां, हरि नाम ना ध्यान मां, हरि तत्व ना ज्ञान मां वारंवार ना तो रेजे। तारू शरीर जेम दरोजे नाहे छे, तारू शरीर दरोजे नाहे छे, तू पुण्य अने स्वास्थ्य पामे छे, तेम तू दरोजे सत्संग मां नाहीश तो तू स्वास्थ्य अने परमात्मा ने पामीश। शरीर को जल से शुद्ध रखना और मन को सत्संग और ध्यान से शुद्ध करते रहना।